साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
ओम शांति। बहुत भरपूर हो गए हैं सभी। आज सारा दिन आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। हाँ, रोज ऐसा लगता है कि आज क्या अच्छा हुआ, ये अच्छा है। एक और चीज उसमें, आज हमारे सामने रुक्मणी बहन बैठी है। कौन है जो नहीं जानते हैं इनको, तेरा हाथ खड़ा करो जो नहीं जानते हैं। अच्छा, काफी सारे भाई बहन नहीं जानते हैं। आप रुक्मणी बहन, जिनको ज्ञान में चलते हुए मोर देन 55 इयर्स हो गए हैं, कलकत्ता से हैं आप ओरिजिनली, और इनका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन्हें शुरू से ही ज्ञान भी वहीं से मिला और शुरू से ही हमारे प्यारे साकार बाबा कहीं या दादा लेखराज कहीं, उनकी लौकिक जो पुत्री जिनको हम दादी निर्मल शांता जी के नाम से जानते हैं और हम परदादी कहते हैं उन्हें, तो शुरू से ही उनके साथ रहने का, सीखने का, सेवा करने का उन्हें बहुत अच्छा मौका मिला और हमने तो उनमें बड़ी विशेषता देखी है। दादियों के साथ, हर एक दादी के साथ कोई ना कोई बहने रहती ही हैं शुरू से ही, लेकिन इनकी बड़ी विशेषता है, बहुत शांत, धीर, गंभीर, बहुत धैर्यता है, बड़ी तसल्ली से बात करती हैं। और जैसे दादी निर्मल शांता थी कि उनके उनसे भी हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, वे बहुत सारी क्वालिटीज जो हैं, मैंने कभी उनको पर्सनली कहा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी क्वालिटीज जो हैं, जो हमारी परदादी में थी, वो इनमें भी देखी हैं। और इतने दादी जैसे कुछ सालों से यहाँ पर, लगभग मैं समझती 6-7 सालों से मधुबन में ही रहा करती थी, पहले तो आप वो कलकत्ता ही थी, और इतने प्यार से उनकी सेवा करती थी। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी एक ही व्यक्ति की आप कंटिन्यूअस सेवा करते रहे, कई बार क्या होता है मनुष्य थक जाता है, लेकिन कभी हमने इनके चेहरे पे थकावट के या परेशानी के चिन्ह नहीं देखे। इनकी बड़ी विशेषता है, हर एक से बहुत प्यार से बात करते, ना केवल इतना, बहुत ज्ञान योग में रुचि है उनकी। जैसे हम सुन रहे थे योग, समय पर जाके योग करना, अगर दादी भी समझो तबीयत ठीक नहीं है, ये अपना समय पे बैठ के योग, दादी का भी ध्यान रखेंगे, योग भी करेंगे, ये सब बातें जो हमने देखी है, मैं वो बात आपको बता रही हूँ। तो अपनी पढ़ाई पढ़ना, स्टडी करना, मुरली के पॉइंट्स नोट करना, और जैसा बड़े कहें वैसा करना, ये सब विशेषताएं हमने इनमें देखी है और अनुभव की है। तो आज हमारे बीच में आई है, जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा रुक्मणी बहन को, तो मुझे लगा क्यों ना एक क्लास इनके साथ रख दिया जाए, बाकियों का तो हम सुनते ही रहते हैं, तो इनका भी एक क्लास रखना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये यहाँ पर थी, तो हमें तो मिलने का मौका मिलता है, लेकिन आप लोगों को कभी इतना मौका नहीं मिल पाता है, तो इस बहाने से आप इनके मुख से, इनके अपने मन, इनकी जो ज्ञान और योग की धारणा है और वो उनके मन के क्या उद्गार हैं, और साथ ही साथ परदादी जी के साथ की कुछ बातें तो मिला जुला आज आपके साथ शेयर करेंगी और आपको अपने अनुभवों से लाभान्वित करेंगी। तो हम रुक्मणी बहन का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो मैं अभी इनसे निवेदन करती हूँ कि आप जो सुनाना चाहती हैं, जो भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, वो अभी आप करेंगी। आदरणीय रुक्मिणी बहन जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसलिए किया, एक तो आप सभी 3-4 दिन से विशेष योग भट्टी कहें, मौन भट्टी कहें, तपस्या कर रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को, भले हम तपस्या कहते हैं, पर इस तपस्या में हम सभी को विशेष बाबा की याद की, प्रेम कहें, प्यार कहें, जैसे भी अभी गीत बज रहा था कि बाबा की याद का जो अनुभव है वो कौन कर सकता है। जिसको बहुत समय का अभ्यास होगा, ऐसे तो मैं देख रहे 3-4 दिन 5 दिन जो भी मधुबन में आते हैं, भट्टियां करते हैं, कुछ ना कुछ अनुभव कुछ लेकर के जाते हैं। और आप सभी भी 3-4 दिन से भट्टी विशेष रूप से कर रहे हैं, मौन भट्टी कहो, याद की भट्टी कहो, योग के है भट्टी कहो, तपस्या में बैठे हैं, उसमें भी कईयों ने कुछ ना कुछ अनुभव जरूर किया होगा। जैसे कि आज की मुरली बाबा की विशेष याद और कशिश के ऊपर थी ना सवेरे की मुरली, 3-4 दिन के अंदर किसने विशेष कशिश का अनुभव किया, वो हाथ खड़ा करे। जो सचमुच में हमको ऐसे अंदर फीलिंग हो कि हमको बाबा ने विशेष मधुबन में इस निमंत्रण पर बुलाया है, और इस निमंत्रण पर आने पर मुझ आत्मा ने विशेष रीति से कशिश का अनुभव किया हो। जैसे आज सवेरे की भी मुरली जब हम सुन रहे थे तो विशेष याद के ऊपर, कशिश के ऊपर, बांधेली माताओं जो बंधन वाली उनकी याद के ऊपर उस प्रकार की मुरली थी। तो हम भी ये देखते हैं कि शुरू से ही जब हम बच्चों को विशेष याद की कशिश का अनुभव होता है तो हम बाबा के बच्चे विशेष बाबा के प्यार में खींचे चले आते हैं, और उस खींच का अनुभव हमें बहुत सुखदायी अनुभव होता है। कभी कभी हम भले योग में बैठते हैं, तपस्या में बैठते हैं, सिर्फ बैठ जाते हैं, पर यदि हमने थोड़े समय बैठ करके भी बहुत सुंदर योग की अनुभूति, कशिश का अनुभव किया होता है, तो हमारे जीवन में वह सदा काल के लिए उतर जाता है। ऐसे हमने अपने जीवन में बहुत शुरू से ही अनुभव बहुत अच्छा किया है। बचपन से कहूं तो भी है, बचपन से जब से ज्ञान में चले, और बहुत खींच और कशिश का अनुभव होता था शुरू से ही। कशिश का अनुभव मैं आपको एक दो उदाहरण भी सुनाऊंगी कि हम कई बार देखते हैं कि यदि हमारा बुद्धि का योग बहुत अच्छा बाबा के साथ लगा होता है तो बाबा की खींच का भी अनुभव होता है, तो साथ में बड़ों के साथ का भी अनुभव हमें बहुत अच्छा, क्लियर, स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे हम कहें हमारा बुद्धि का योग, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होती है, बाबा से बुद्धि की लाइन जुड़ी होती है, तो बाबा भी खींचता है, साथ में निमित्त बड़े होते वो भी खींचते हैं। कई बार मैं अनुभव करती हूँ कि कभी कभी हम ऐसे बैठे होते हैं, कोई भी कार्य करती हूँ, और अचानक कार्य करते करते ऐसे खींच होगी जैसे कि दादी ने याद किया है, जैसे नीचे रहती हूँ हम तो जास्ती करके शांतिवन में 10 महीना वहाँ होते, 2 महीना ऊपर, मई जून का महीना ऊपर पांडव भवन में। तो मैंने अनुभव कई बार किया कि जब मेरे को खींच होती, कशिश होती है दादियों से मिलने की, चाहे रात का 10 बजा हो चाहे दिन का 3 बजा, मेरे को मालूम है सोने का टाइम है, पर मैं झट सीधे उठ के चल देती हूँ। और जब दादियों के नजदीक जाती हूँ, जैसे गुलजार दादी हुई, जानकी दादी, उनके पास जाऊंगी और जाने के साथ दादी सामने से मेरे को देखेगी, कहेगी रुक्मणी तुमको मैंने याद किया। मैंने कहा दादी आपने याद किया इसलिए मैं खिंच के चली आई, बाकी अभी टाइम नहीं है, 10 बजे सोने का टाइम है, दिन में भी 3 बजे रेस्ट करने का टाइम है। तो मैंने अनुभव बहुत बार किया है कि जब हमारी बुद्धि की लाइन बाबा से और बड़ों से इतनी क्लियर स्पष्ट होती है, तो बाबा भी हमको उस प्रकार की बहुत सुंदर टचिंग करता है, और वो भी बड़े भी हमको याद करते हैं। कोई कारण होता है, कुछ कारण भी नहीं होता है, सिर्फ मिलना होता है, टोली दादी को खिलानी होती है, सिर्फ दृष्टि लेनी होती है, दादी दृष्टि देती है, इसी लक्ष्य से 5-10 मिनट भी जाऊंगी तो ऐसे लगता है कि जैसे आत्मा बहुत भरपूर हो गई। ये क्या हुआ कि हमारे कशिश का प्रभाव, हमारा प्रैक्टिकल हमको बाबा इस साकार वतन में दिखाता है। जिस प्रकार मैं अपना और भी अनुभव लौकिक में भी, जब घर से आते जाते थे, बाबा के घर में बीच बीच में रहते थे, तो मेरे को कभी कभी ऐसे एकदम खींच होती थी बस मैं सेंटर जाऊं। कभी कभी शाम का 6 बज गया, स्कूल से पढ़ के आते थे तो भी लौकिक माँ भी इतना आने नहीं देती थी, क्योंकि बंधन भी बहुत थे, पर मेरे को एकदम ऐसी खींच होती थी मैं जाऊं बाबा के कमरे में, और लौकिक माँ को कहती थी मैं 10 मिनट आने का, 10 मिनट जाने का, 10 मिनट बाबा के कमरे में मिल के आऊंगी और आधा घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगी। तो मैंने कई बार इतना सुंदर अनुभव किया कि जिस प्रकार हम जैसे कि किसी से साकार रूप में मिलन मनाते हैं, अपनी दिल की बातें करते हैं, दिल की रूह रूहान करते हैं, ऐसे मैंने बाबा के साथ में बहुत बार ऐसे कोई भी मन का संकल्प थोड़ा भी होता और जैसे बाबा हमको खींच लेता। तो इस प्रकार मेरे को बचपन से ही बहुत खींच का अनुभव होता था, क्योंकि जैसे छोटेपन में आए और ज्ञान का तो इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि ज्ञान इतना पहले समय में स्पष्ट नहीं था, जैसे वर्तमान समय अभी के समय में हम देखते हैं बहुत हम सभी को ज्ञान के साधन मिल गए हैं, मुरलियों में भी प्रश्न उत्तर वरदान सलोगन सार, पर जब हम आए थे इस ज्ञान में छोटेपन में तो कुछ साधन नहीं थे, सिर्फ 4 पेज की मुरली सुना देती थी, बहने पढ़ लेते, इतना ही ज्ञान था। पर बचपन से इतना जो खींच होती थी, और मेरे को योग में बहुत घंटों घंटों बैठ जाती थी, और जैसे बाबा ने आज भी कहा ना कि कई बच्चों को बाबा की याद के याद में भी प्रेम के आंसू आते हैं, ऐसा मैं कई बार अनुभव करती थी। तो जैसे हम फिर बड़े होते गए थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ, तो सेंटर पर भी आकर के हम परदादी को और साथ में संतरी दादी थी, संतरी दादी वो थी, कई पुराने होंगे जानते होंगे, संतरी दादी थी बिस्कुसुर भाव की युगल, बाबा के भतीजे की बहू है, बिस्कुसुर भाव भतीजे थे ना, बड़े भाई के बेटे। तो दादी पहले साकार बाबा जब थे तो उनके अंग संग रही, जब बाबा 69 में अभिक्त हुए उसके बाद में संती दादी कलकत्ते में बाबा के कहे अनुसार डायरेक्शन से संती दादी कलकत्ते में 70 में गई। तो संती दादी का पार्ट ट्रांस का था, वो भी बहुत पक्की निश्चय बुद्धि संदेशी थी, और हम दादी को कई बार मैं अनुभव सुनाती थी, दादी मेरे को बहुत खींच होती है, मेरे को ऐसे लगता कोई मेरे को खींचता योग में। तो दादी मेरी बात हमेशा सुनती रहती थी, पर उम्र छोटी थी, एज छोटी थी। छोटी एज होने के कारण दादी बात सुन करके अंदर समा लेती थी, और कई प्रकार कई बार देखती थी कि जैसे खींच होती है, तो खींच के साथ मेरे को थोड़ा अंदर डर लगता था, क्योंकि शुरू शुरू में हमने कई संदेशियों को देखा। वो जब ट्रांस में जाती थी तो ट्रांस में जाने के साथ बाबा उनको कभी विनाश का दृश्य, कभी धर्मराजपुरी का दृश्य दिखाते थे। वो संदेशियां बहुत आंख से पानी बहाती थी, बहुत रोती थी, क्योंकि बाबा सूक्ष्म बतन में दृश्य दिखाते और नीचे साकार में आंख से पानी आता। तो मेरे को ये दृश्य उनका देखा हुआ था, तो मेरे को थोड़ा डर लगता था, भय लगता था कि ट्रांस का पाठ क्या है, ऊपर जाना क्या है, संदेशी का पाठ क्या, इस तरह थोड़ा मन में भय लगता था। तो दादी मेरी बात सुनती रहती थी हमेशा। तो कई बार सेंटर में आते भी योग कराते थे, बैठते थे, पर जब खींच का अनुभव होता था तो कभी कभी मैं नीचे की बात याद कर लेती, कभी किसको सामने देख लेती थी, या कोई बात याद करके नीचे जैसे कि उतर जाती थी, क्योंकि अंदर में थोड़ा डर भय था। तो एक दिन इस पाठ को भी मैं साकार बाबा जब थे, हम छोटेपन से ज्ञान में आए, तो बाबा को हम बहुत प्यार से पत्र लिखते थे साकार बाबा को, तो बाबा भी उसके रिटर्न में बहुत प्यार से पत्र लिखते थे। तो एक बार बाबा ने कहा कि बच्ची आप कौन हो, है इतना प्यार से बाबा को पत्र लिखती हो। तो बाबा ने, जब मैं 13-14 साल की थी, और बाबा ने कहा कि बच्ची आप अपना फोटो भेजो। तो स्कूल की ड्रेस में पहना हुआ, हमने ड्रेस पहनी, उसमें फोटो खिंचवाया और बाबा को भेजा। तो बाबा ने एक बार कलकत्ते में प्रदर्शनी लगने वाली थी 67 में, तो बाबा ने पत्र लिखा कि जो जास्ती पार्टी समझाएंगे बच्चे, बाबा उसको इनाम देगा। तो ऐसे भी मैं बचपन से ही बाबा से बहुत प्यार होने के कारण, जबकि पहले देखा नहीं था, क्योंकि बंधन बहुत थे, लौकिक बाप तो एकदम एंटी थे, एकदम लौकिक माँ तो पीछे ज्ञान में चलती रही। तो एक सप्ते के अंदर जब 40 पार्टी समझाई और साकार बाबा को पत्र लिखा, तो बाबा ने उस पत्र के रिटर्न में हमें जवाब में इनाम में कहें, बाबा ने पत्र में लिखा है बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है। पर मेरे को इस चीज का ज्ञान नहीं था, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, इसका भाव क्या, कुछ भी जानकारी नहीं थी। पर ज्ञान में चलते रहे और संती दादी को सुनाते थे। तो एक दिन संती दादी को बहुत अस्थमा होने लगा, तो घर से ही आते थे, बंधन भी थे, तो दादी ने बोला आज आप भोग लगाओ। तो मैंने बोला मैं तो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा जो अंदर में डर था, भय था, तो मैंने कहा कहीं ऊपर जाऊंगी तो कहीं लटक जाऊंगी, कहीं मेरा शरीर छूट जाएगा, तो मैं दादी को बोला मैं तो नहीं लगाऊंगी। तो संती दादी ने परदादी को बोला कि आप इसको बोलो, क्योंकि घर से आते भी मैं दोनों दादियों की सेवा हर प्रकार की करती थी। तो बहुत दादी ने कहा और फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम बीच में बैठना, हम आजू बाजू में हम दोनों बैठेंगे। तो मेरे एक तरफ परदादी बैठी, दूसरी तरफ संती दादी बैठी, और मेरे को बोला कि कहा कि आप एकदम निश्चिंत रहना, निरसंकल्प रहना, जरा भी अंदर में भय डर कोई संकल्प नहीं चलाना, बस सिर्फ सोचना बाबा के पास जाना। फिर मैंने भी मन में सोचा कि ठीक है, अभी कुछ भी होगा तो मेरे आजू बाजू तो दो जन बैठे हैं, तो मेरे को संभाल लेंगे, बचा लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि घर में एक ही लड़की थी, दो भाई थे, तो ऐसा थोड़ा दादी ने जब कहा, दोनों आजू बाजू बैठे और मैं पहली बार जैसे कि 67 में बाबा ने वरदान दिया और 77 में बाबा ने मेरे को पहली बार वतन में खींचा। तो जैसे मैं गई तो बाबा ने बहुत सहज रीति से वतन में इमर्ज भी किया, दृश्य भी दिखाया। फिर मैं नीचे आई तो दादी ने कहा, पर दादी ने भी कहा कि अभी आप सुनाओ क्या देखा। तो जो देखा वो मैंने सुनाया बहुत अच्छी तरह से, बाबा ने फूलों का बगीचा और क्या क्या दिखाया था। तो मेरे पीछे पीछे संती दादी भी गई, तो उसने भी मेरे को वतन में देखा। तो फिर वो भी नीचे उतर के आई, तो दादी ने भी फिर वही संदेश सुनाया जो उन्होंने देखा। दादी ने बोला अब तुमको उड़ना आ गया। तो संती दादी कहने लगी कि देखो तुमको ये साकार बाबा ने ये नाम दिया और तुमको अपने नाम का मालूम ही नहीं है। मैंने कहा मेरे को क्या मालूम इसका अर्थ क्या भाव क्या, मैं तो कुछ जानती नहीं, क्योंकि ज्ञान की प्रकाशता कुछ भी थी नहीं, ज्ञान कुछ भी समझ में नहीं आता था मेरे को। तो इस प्रकार 77 में बाबा ने ये ट्रांस का पाठ खोला, पर ट्रांस के पाठ में भी बाबा ने मेरे को बहुत निश्चय बुद्धि बनाया। बड़ों से तो बहुत कुछ, दादी दीदियों से तो मैंने बहुत कुछ सीखा। संतरी दादी भी थी, वो बताया ना कि सबसे पहले नंबर की संदेशी थी। जब बाबा अभिक्त हुए तो सबसे पहले शुभ बाबा की 15 मणि संती दादी के तन में हुई, और बाबा ने उनके तन के द्वारा आगे का यज्ञ कैसे चलेगा, आगे कैसे पार्ट प्ले होगा, सब बाबा ने संती दादी के तन द्वारा स्पष्ट किया था। उसके बाद में गुलजार दादी के तन द्वारा ही पार्ट अभिक्त बाप दादा का चला। तो इस प्रकार बाबा ने हमको इस ट्रांस के पाठ में भी बहुत निश्चय बुद्धि बनाया, क्योंकि शुरू शुरू मेरे को याद है कि कई बार हम जाते थे और आधा संदेश देखती थी, आधा नीचे आके सुनाती थी, आधा भूल जाती थी। तो मैं वो भी सुना देती, मैं तो आधा भूल गई। तो दीदी दादी हमको कहती तुम ऐसे नहीं बोले, ऐसे नहीं बोला जाता। मैंने बोला मैं भूल गई तो क्या करूंगी, अभी जो था वो सुना दिया मैंने। तो क्योंकि उम्र छोटी थी, एज छोटी, इतनी समझ तो थी नहीं, पर बाबा ने इतना अच्छा इस ज्ञान को हमारे को दिव्य बुद्धि कहें, दिव्य दृष्टि के द्वारा इतना ज्ञान को स्पष्ट किया। एक बार की बात है, मेरे को अच्छी तरह कभी भूलती नहीं, आज से 32-33 साल पहले की बात है। मैं जब जा रही थी भोग लेकर के, तो एक कोने में एक भाई बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था, और सोच रहा होगा कोई अपने मन के हरेक की प्रवृत्ति, कोई ना कोई बातें होती है घर गृहस्थी की, और जाते जाते उसके ऊपर दृष्टि पड़ी होगी। और जैसे मैं तो चली गई, बाबा ने जो दृश्य दिखाया और दिखा दिया, सुना दिया। फिर बाबा ने मेरे को बोला कि बच्ची जब तुम आ रही थी, जब ऊपर में इस भाई का इस प्रकार का संकल्प चल रहा था, तो तुम जाकर के सभी को क्लास में कहना कि जब योग में बैठते हैं, भोग में बैठते हैं, तो विशेष सभी बहुत प्यार से बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि एक ही संकल्प रख के करेंगे तो बाबा के पास जाएंगे और उस भोग में भी शक्ति भरेगी। इस प्रकार बाबा ने संदेश सुनाया, और वो जो भाई कोने में बैठे हुए थे, उनका जो संकल्प था वो बाबा ने मेरे को स्पष्ट सुनाया और दिखाया कि देखो बच्ची, इस भाई के, इस बच्चे के मन में क्या संकल्प चल रहा है। तो मेरे को तो मालूम नहीं था, जब मैं नीचे उतरी तो मैंने संदेश सुनाने के बाद में उन भाई को बुलाया। वो कुछ संकल्प लेके आए थे, सोचा आज क्लास के बाद में परदादी को, संती दादी को मैं अपनी कोई समस्या बताऊंगा। तो जब बाबा ने मेरे को उनकी बात एकदम वतन में इमर्ज किया और दिखाया, तो मैंने उन भाई को बुला करके, सामने बुला के पूछा कि भाई, मैंने कहा जब मैं जा रही थी तो आपके मन में इस प्रकार का संकल्प चल रहा था। तो वो बेचारा भाई तो थोड़ा सोच में पड़ गया कि मैंने तो रुक्मणी बहन को बोला नहीं, रुक्मणी बहन को ये बात कैसे मालूम। मैंने कहा मेरे को मालूम नहीं, आपने तो बताया नहीं, पर मेरे को बाबा ने इस प्रकार ये बात दिखाई और बताई कि इस बच्चे का ऐसा चल रहा। तो ऐसे जब योग में, भोग में बैठते तो कभी भी इस प्रकार का संकल्प नहीं चलना चाहिए। फिर मैंने दीदी को, परदादी को, संती दादी को बताया इस भाई के मन में इस प्रकार संकल्प चल रहा था, तो हमने ये देखा प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन में, यदि हम कोई प्रकार का संकल्प करते हैं, चाहे बेड संकल्प हो चाहे अच्छा संकल्प हो बे, वो भी बाबा तक जरूर पहुंचता है। इसलिए हम जब बाबा के बच्चे बने हैं तो हम बाबा के बच्चों को विशेष अपने संकल्पों को बहुत श्रेष्ठ रखना चाहिए। जैसे कि हम कई बार परदादी को भी देखते थे, कई भाई बहने सेंटर में, क्योंकि हम तो शुरू से बचपन से कलकत्ते में रहे, परदादी भी 64 से पहले बॉम्बे में थी और उसके बाद 64 से कलकत्ते में रही, तो हमने कई बार देखा कि यदि दीदी किसी को याद करती थी और वो भाई सामने आ जाता था, यहाँ तक कि प्रवृत्ति वाले जो भाई बहने आते थे उनको भी इस प्रकार की शिक्षा देती थी जो वो एकदम अपने आप को भरपूर करता था। मेरे को एक बात अभी याद आती है, एक बार की बात है, इसमें कई तरह की खासकर बात ही मैं सुनाऊंगी। एक बार की बात है कि एक सेंटर में कलकत्ते में, क्योंकि दादियों की तो पालना बहुत जबरदस्त होती है और निस्वार्थ पालना होती है, तो कलकत्ते में एक दो तीन भाई ऐसे थे जो शाम के समय आते थे ऑफिस से, तो ऑफिस से आने के बाद सेंटर पर आते थे और परदादी उनको चाय टोली खिलाती थी, क्योंकि ऑफिस से आए हैं काम कारोबार करके थके हुए। तो एक दिन क्या हुआ, एक भाई शाम को 4 बजे आते थे और खास ताजी टोली बनवाती, दूसरे नेक्स्ट पहले की टोली कभी नहीं, ताजी बना के खिलानी है, हम बहनों को कहती थी। तो एक भाई जो शाम को 7 बजे आते थे और उसके बाद चाय टोली खा करके क्लास मुरली क्लास 7 बजे से शुरू होता था, बैठते थे। अभी हरेक का संकल्प कैसा होता है वो तो मालूम नहीं, तो वो भाई यज्ञ में भी बहुत शुरू में उन्होंने किया, पर किसी को किस प्रकार की सूक्ष्म माया आ जाती वो तो मालूम नहीं पड़ता है। तो भाई हर महीना भंडारी में डालते होंगे, तो एक दिन क्या हुआ कि 5-6 महीने से उस भाई ने कुछ भंडारी में डाला नहीं है, दीदी हाथ में बहुत कम लेती थी, यदि कोई देता था कहती भंडारी सामने ना उसमें डाल दो, तो उन भाई ने, अनन्य भाई थे, तो उन्होंने भंडारी में डाला नहीं। और भले दीदी और संती दादी हम देखते थे, संती दादी भंडारी खोलती थी, गिनती भी वो करती थी, थोड़ा परदादी भी मदद करती थी, पर उस भाई के मन में जो 5-6 महीने से नहीं डाला, तो एक दिन वो भाई शाम को आके जब चाय पी रहे थे तो दीदी को कहते हैं, दीदी मैंने 5-6 महीने से बाबा की भंडारी में कुछ डाला नहीं है, आपको दिया नहीं, ऐसे करके भाई बोले। तो दीदी ने, माना परदादी ने उनको बोला, आपने क्या बोला, क्या कहा? तो उस भाई ने वही बात रिपीट की कि मैंने कुछ दिया नहीं 5-6 महीने से। तो परदादी ने उनको झट सीधे उत्तर दिया कि आप देने वाले कौन हैं? हमको खिलाने वाला देने वाला बाबा है, हमने जीवन बाबा को दी है, ना कि किसी भाई बहनों को दी है, हम बाबा के ऊपर बलिहार गए हैं। तो दीदी ने झट सीधे उन भाई को इतना प्यार से उत्तर दिया, तो भाई बहुत अपने अंदर बहुत सोच में पड़ गए कि मैंने 5-6 महीने से दिया नहीं, पर फिर भी दोनों दीदी दादियों का व्यवहार, मेरे साथ जो बर्ताव, वो जरा भी मैंने चेंज देखा नहीं। तो हमने ये देखा कई बार, कई तरह की बातें आती सेंटर पर हमने देखा कि प्रैक्टिकल में दादी दीदियों का जो प्यार है, इतना भाई बहनों को प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, दिल का कहें दुलार देना, इतनी अंदर से शुद्ध भावना, शुद्ध वाइब्रेशन, जैसे बाबा के लिए भी कहते हैं ना कि बाबा का कितना उदार दिल था, ऐसे हमने प्रैक्टिकल कई बार हमने परदादी को भी देखा। जैसे कि शिव जयंती आती थी तो मेरे को याद है कि जब बाबा साकार में भी थे और अभी थोने के बाद में भी, दीदी कई बार, कई जितनी 33, 34, 60, 65 शिव जयंती का मेरे को याद है, तो कुछ न कुछ विशेष यादगार शिव जयंती पर भेजती थी और कभी नहीं कहा किसी भाई बहनों को कि आपको करना है। और यहाँ तक कि यदि सेंटर्स की निमित्त बहनें भी यदि कुछ कहती थी, दीदी हम भाई बहनों को कहें, तो कहती थी बिल्कुल कभी किसी से मांगना नहीं है। कहती थी तुम भूखी है क्या, भूखी है कैसे अपना, उसे दीदी से कहती थी। बोला कभी भी मांगना नहीं है, मांगन से मरना भला। जिसको संकल्प होगा हम अपने ऐसे वाइब्रेशन देवे, जिसको संकल्प होगा वो बाबा के घर में करे। मैं मांगू क्यों, बाबा ने कभी मांगना सिखाया है क्या, कभी ब्रह्मा बाबा ने मांगा। जब 14 साल यज्ञ चला, एक ब्रह्मा बाबा निमित्त बना इतने बच्चों को खिलाने के लिए, भले शिव बाबा बैठा था, तो बाबा ने किसी से भी ब्रह्मा बाबा ने मांगा नहीं, शिव बाबा ने मांगा नहीं, तो आप निमित्त बहने क्यों मांगती हैं? तो हमने देखा कितना दादियों का दिल इतना उदार विशाल दिल था, वो हमने प्रैक्टिकल परदादी में देखा, संती दादी में देखा। और जितना ही उदार उतना ही एकानामी भी दादियों में देखी, क्योंकि एकानामी का पूरे अवतार थे। जिस प्रकार मैं एक दो बातें सुनाऊंगी कि कैसे दादियां भले इतना यज्ञ में आई, इतने भरपूर घर की थी, संपन्न घर की, पर फिर भी दादियों में इतनी एकानामी थी। जैसे हम बड़ी दादी को देखा, जानकी दादी को देखा, परदादी को देखा एकदम नजदीक से, कि कहीं भी कमरे से बाहर जाती थी तो कमरे से बाहर जाने के पहले कहती थी लाइट बंद करो, लाइट ऑफ करो। हम लोग कहते दीदी अभी बंद करते ना, नहीं बिल्कुल पहले बंद करो, नहीं तो बिल के कौन देगा, तुम देगी क्या बिल? तो हम मुस्कुरा के कहते हम तो नहीं, आप बैठे हैं ना, तो मैं कहती हूँ ना बिल, ये पंखा बंद करो, इसका बिल बिजली का बिल आएगा तो कौन देगा। तो इस प्रकार हमने देखा छोटी छोटी बातों पर इतना, जैसे कि खुद परदादी पानी पीती थी तो कभी आधा ग्लास से थोड़ा पौना ग्लास होता तो कहती थी कम करो। हम कहते दीदी पड़ा रहे ना, कोई बात नहीं आपको दूसरा। बोला नहीं, जितना मेरे को चाहिए उतना, उतना ही मेरे को पीना, उतना ही तुमको क्लास में देने का है, यदि वेस्टेज होगा तो तुम्हारे खाते में जाएगा। अब पीना उनको है, यदि पानी थोड़ा मैंने फेंका तो मेरे को कहती तुम्हारे खाते में जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे अपने जीवन का भी ऐसे ही अनुभव है कि हम जब छोटे थे और ज्ञान में आए और सेंटर पर रहना शुरू किया था, तो आप सोचते सेंटर पर तो अभी के समय में तो बहुत सेंटर बड़े बड़े और अच्छे हैं, बन गए हैं, और हम लोग जब आए थे तो सेंटर इतने बड़े भी नहीं थे और इतने भरपूर भी नहीं थे। तो सेंटर पर आपको मालूम है कि टोली तो ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, टोली में जो रबड़ लगाते हैं ना, है, रबड़ बैंड छोटी छोटी रबड़, तो हम हमारे लोग के घर में रबड़ का और कई चीजों का बिजनेस था। तो हम घर से तो हम वो रबड़ लेकर के आते, थोड़ा पंखा तेज कर लो तो भाग जाए, तो वो हम रबड़ लेकर के आते थे। तो लोग के घर में देखते थे बिजनेस है, तो घर से जब लेके आते थे, क्योंकि घर में देखते थे बरांडे में, सीढ़ी में, बाथरूम में, सब जगह पड़ी रहती है, तो सेंटर में भी लाके टोली में लगाते, कोई चोटी में लगाता, कोई गिराता, कोई तोड़ता, तो कौन ध्यान देगा। तो हमने देखा कि परदादी का कमरा अंदर था, बीच में किचन क्रॉस करते थे और पीछे ऑफिस जाती थी, ऑफिस किचन क्रॉस करके होता था, तो रबड़ छोटी छोटी पड़ी होती थी बरांडे में, और हम ही परदादी के आगे पीछे घूमते रहते थे। तो कई दिनों से दीदी ने देखा होगा कि ये रबड़ पड़ी है, उठाती नहीं है, और इसको नशा है, मैं तो लोग की घर से लाती हूँ क्या है? उस जमाने में तो 10 रुपया किलो थैली आती थी, एक किलो थैली 10 रुपए की होती। तो दीदी को ऐसे, क्योंकि परख तो बहुत थी ना, तो उनको अंदर में था कि ये समस्या, मैं तो लोग की घर से लाती हूँ तो लोग के घर में पड़ी होती है, ऐसे सेंटर में पड़ी रहेगी। तो कई दिन देखने के बाद में एक दिन परदादी कहती है ये रबड़ उठाओ। तो मैंने एक बार उठाया, दो बार उठाया, मैं बोला क्या है दीदी, छोटी सी पाइप ऐसे की रबड़ है, अभी इसको क्यों पड़ा रहने दो, झाड़ू में चली जाएगी आगे। तो दीदी मेरे को बुला के इधर बोलती, इधर आओ, तुम क्या समझती, तुम अपने लौकिक बाप के घर से लाती हो? बोला जिसने वहां से तो लेके आई तुम, उसका तो भाग्य बन गया। यदि तुम एक ये रबड़ गंवाएगी ना, तुम्हारा 1,00,000 का भाग्य कम होता जाएगा। तो मेरे को दीदी की बात सुन के थोड़ा मन में ऐसे चिंता सी अंदर होने लगी। मैं बोला पता नहीं, सारा दिन सेवा करते हैं 19 घंटा 20 घंटा, अभी भाग्य बन रहा वो तो मालूम नहीं, मेरे को ज्ञान नहीं है, समझ में नहीं आता है। अब दीदी कहती एक रबड़ गंवाएगी तुम्हारा भाग्य कम हो जाएगा, तो मेरे को थोड़ा अंदर में बहुत थोड़ा चेहरा सुस्त हो गया। तो दीदी ने बोला ये इसका चेहरा उतरा क्यों है? तो मैंने बोला दीदी आपने तो इतनी बड़ी बात बोल दी, तो मैं अभी टोली के डिब्बों में रबड़ नहीं लगाऊंगी। तो दीदी कहती है बाबा ने कब कहा कि सेवा से छूटना है, तुमको ही रबड़ लगानी, तुमको ही जो रबड़ का जितना काम होगा ना तुमको ही करना है। मैंने बोला ये तो बड़ी मुसीबत की बात आ गई, दीदी को बोला। तो दीदी ने बोला तुम सेवा से छूट के नहीं जा सकती है। तो मैंने कहा मैं टोली का डिब्बा भर देना करेगी और रबड़ कोई दूसरा लगाएगा। बोला नहीं तुमको ही करना है ना। मैंने बोला तुमको करना तो तुमको करना, चाहे कुछ भी हो। मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा चोटी में रबड़ लगाती। मैंने बोला ठीक है, मैं चोटी में रबड़ लगाना बंद कर दे, रिबिन लगाना शुरू कर देगी। एक मिनट पूरा करती। तो इस प्रकार मतलब परदादी ने छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी शिक्षा दे दी। तो हमने देखा कि है छोटी सी बात पर उसकी गहराई इतनी है कि स्पष्ट हम देखते थे कि दीदी कहती थी कि देने वाले ने अपना भाग्य बना लिया और आप बाबा के घर में बैठे हो और यदि आप वेस्टेज करेंगे तो उसका खाता जमा हो गया और आपका खाते में घट गया है, जमा नहीं हुआ। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातें बहुत शिक्षा है परदादी देती थी। अभी 3 मिनट ही होगा।
प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
इस प्रकार हमने तो अपनी लाइफ में बचपन से परदादी के साथ रहे और सब कुछ सीखा, चलना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे है, पढ़ाई पढ़ना, ज्ञान कैसे सुनाना, सब कुछ प्रैक्टिकल उनको देखते थे और देख करके वो प्रैक्टिकल वैसा दीदी सिखाती भी थी। जिस प्रकार मैं एक दो और बात सुनाऊंगी, इसी प्रकार एकानामी की बात है। एक बार कई बार जैसे दादियों का टाइम तो 1:30 बजे 2 बजे का भोजन का होता है, तो कलकत्ते में रहते थे, परदादी को भोजन खिलाते थे, तो कई बार लेट हो जाता, कोई अचानक आ जाता था, दिन का टाइम होता था, तो दिन के समय खाना तो सिंपल ही खाते, दाल चावल सब्जी रोटी। तो कई बार देरी हो जाने का चावल बनाते थे, तो चावल कभी 2-3 बार गरम करो, भले थोड़ा सा भी घी तेल डालो, फिर भी बर्तन में चिपक जाता है ना, पतीले में लगा रह जाएगा। तो दीदी को खाना खिलाते थे तो यदि 2-3 बार गरम किया तो पतीले में चावल जितना निकालना था निकालते, नहीं निकल पाता तो नल के नीचे हम लोग रख देते थे। तो परदादी बहुत युक्तिबाज, कभी ऐसे आंख, कभी मुंह से तो कभी कोई दादियों ने अशब्द बोला नहीं, पर तिरछी नजर से बाबा की तरह से एकदम सब बात रीड कर लेती थी। तो हम लोग चावल जितना चाहिए ले लेते और कभी फिर नल के नीचे पानी में पतीले को रख दिया। दीदी खाना खा के आदत थी उनकी, भोजन करने के बाद में थोड़ा इस छत से उस छत में जाती थी, भोजन थोड़ा 5-10 मिनट पैदल करती थी। तो दीदी को खाना खिला के हम लोग दो तीन बहनें थी, हम लोग भी भोजन करते थे। तो दीदी बड़ी युक्ति से कमरे से निकल के किचन में जाती थी और पतीले खोल के देखती थी। क्या उस समय हम लोग के समय तो गैस भी पीछे आई है, चूल्हे पर ही खाना बनाते थे, पीछे गैस थोड़े समय के बाद आ गई, गैस पे खाना बनाते थे। तो दीदी युक्ति से पतीला खोल के देखती कितनी दाल बचा कितनी सब्जी, पर चावल का जो पतीला था वो नल के नीचे रखा और वो फूल चावल का पानी के बाद वो ऊपर चावल के दाने आ जाते हैं ना, तो वो दाने कम से कम 20-25-50 दाने तो जरूर ऊपर आ जाएंगे फूल के। तो दीदी देख के चली जाती थी, फिर वापस लौटती थी छत से आके, तो कहती कितना खाना बचा क्या ऐसे देख के, फिर कहती थी कि देखो तुमने पतीले में इतना चावल छोड़ा है, इतना दाना छोड़ा है, ये तो मेरे हिस्से जितना तुमने वेस्टेज कर दिया। अब वो वास्तव में इतना ही चावल खाती, एक चम्मच डेढ़ चम्मच जितना, ज्यादा नहीं खाती थी। तो दीदी कहती थी कि देखो ये भी तुम्हारे भाग्य से कम हो जाएगा, लाने वाले ने तो उसने बोरी भर के लाया, अब तुमने सोचा दीदी को मालूम नहीं पड़ेगा, कौन देखता है, अब तुमने झट सीधे जितना चाहिए निकाला जल्दी और नल के नीचे रख दिया, पर चावल तो वो तो दाना ऊपर उठ के आ गया। तो दीदी कहती थी कि मुठिया इससे तो तुम खुरच करके यदि टीना पर डाल देती तो चिड़िया पक्षी का भी पेट भर जाता, अब ये नाली के मुंह में जाएगा ये तो क्या हो गया, वेस्टेज हो गया ना। तो आप सोचो इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी छोटी शिक्षा देते थे जो लगता था कि सचमुच में, वो कहती जिसने लाया उसका तो भाग्य बन गया, पर आपने गवाया तो आपके भाग्य से एक कट हो गया। तो इस प्रकार परदादी इतनी छोटी सूक्ष्म बातें होती थी, ये तो मैं सिर्फ एक दो बात सुना रही हूँ कि किस प्रकार हम बहनों को, जो साथ में रहने वाली बहनों को, बहुत छोटी छोटी बातों पर देती थी। एक बार मेरे को याद आता है कि एक बार एक बहन गैस पर दूध चढ़ा के इच्छा से उस छत में चली गई। दीदी ऑफिस में बैठी थी, दूध निकलने के बाद तो थोड़ी खुशबू आती ना, जलेगा तो खुशबू जल्दी मालूम पड़ जाती है। तो दीदी ऑफिस से निकल के किचन में जाके गैस बंद किया, उस बहन ने दूर से दीदी को देखा, दीदी किचन में गई तो जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर उसको याद आया कि मैं दूध चढ़ा के आई हूँ, दौड़ती हुई आई, दीदी ने तो गैस बंद कर दी। तो दीदी दौड़ती आई बहन, तो दीदी को बोला दीदी सॉरी मेरे से भूल हो गई। दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुमने तो सत्यु की रिहर्सल कर दी, अभी सत्यु तो आने में देरी है, कोई बात नहीं, दूध की नदियां बहा दी, रिहर्सल अभी कर ली। तो उस बहन ने सॉरी कहा तो फिर बोलती है तुमको साड़ी और दूं क्या, तो वो बोली नहीं दीदी मैं ऐसे भूलोगी मैं चढ़ा के, बोले कोई बात नहीं है। तो हमने ये प्रैक्टिकल देखा कि कभी भी परदादी ने आंख से भी कभी किसी को डराया हो, धमकाया हो, शिक्षा दी हो, कभी नहीं, उसको प्यार से नेगेटिव को भी पॉजिटिव करके इतना प्यार से समझाती जो सामने वाला व्यक्ति, भले भूल हमारी होती थी पर हमको भय लगता था, पर कभी भी दीदी ऐसे नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है, कभी हम लोग को अपना लाइफ में कभी अनुभव नहीं है। मेरे को याद है कि जब कोई अमृत बेले 4 बजे कोई बहन नहीं उठती थी ना, और अमृत बेले 4 बजे एकदम एक्यूरेट तैयार होकर संदली पर बैठ जाती थी योग कराने, तो एक बार कई बार होता था बहनों का कभी रात को देरी से सोए तो सुबह उठी नहीं। एक दिन ऐसी बहन बोली उठी नहीं, तो दीदी बोली फलानी दिखाई नहीं दे रही है, तो पर वो अमृत बेले आई नहीं थी योग में, तो दीदी ने बोला वो कुमारी दिखाई नहीं देती है। तो दीदी को तो मालूम पड़ गया आई नहीं है क्लास में सवेरे, तो इसलिए वो थोड़ा अंदर भय दिल खाता ना, मैं आज योग में नहीं आई हूँ। तो दीदी ने उसको बुलाया, मेरे को कहा उसको बुला, बोला कोई बात नहीं है, दीदी तो नहीं कुछ बोलेगी आपको, पर आपको अपने आप को सजा दो कि मैं आज अमृत बेले नहीं उठी तो आज मेरा नाश्ता बंद, अपने आप को सजा दो, अपने आप से महसूस करो। मैं क्यों बोलूं यदि आप नहीं योग में आए हैं तो मेरा तो कुछ नहीं हुआ, घाटा हुआ तो आपका, फायदा हुआ तो आपका। तो हमने देखा कि कई बातों में जो सारे दिन की लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। खुद ऐसा प्रैक्टिकल, कई ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में हमने प्रैक्टिकल उनके जीवन से देखा कि सचमुच में जो बाबा कहता ना कि आप बच्चों को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना, हम कई बार बहुत प्यार से हम बच्चे बाबा की मुरली के आधार जब बाबा पूछते हैं तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम झट हाथ खड़ा कर देते हैं। पर मैं जब बाबा की ये बात सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो हम अपने जीवन से अनुभव करते कि सचमुच में हमारा वो प्रैक्टिकल वैसा जीवन बना है। वैसी मैंने अपने अंदर वो विशेषताएं, गुण, वो शक्तियां भरे हैं जो मैं जो जाकर के संपन्न है 16 कला संपूर्ण बन पाऊं। तो ऐसी हम प्रवृत्ति में भी रहते, घर गृहस्थी में भी रहते हैं, तो ऐसा नहीं बाबा कहते कि प्रवृत्ति वाले घर गृहस्थी वाले ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। हमने तो अपनी लौकिक माँ को भी देखा जो ज्ञान में चली, तो इतना घर में रहते हुए इतना उनका निश्चय था, यदि दीदी ने उनको कह दिया कि गुलाब ये काम करना है तो नहीं करना, यहाँ तक कि हमको कौन सा कपड़ा फ्रॉक ड्रेस पहनानी है तो भी दीदी से पूछती थी, दीदी ने बोल दी गुलाब इसको अभी ये नहीं पहनाना, तो हम कभी कभी कहते थे तुम तो सब बात दीदी से जाके पूछती है, अब पहनना हमको दीदी क्या करेगी उसमें, छोटे थे ना तो ऐसे बोलते थे। पर वो इतनी निश्चय बुद्धि थी घर में रहते हुए, परिवार में कहीं शादी है, कहीं प्रोग्राम में जाना तो कौन सी साड़ी, कौन सा जेवर, ज्वेलरी पहनी, वो भी दीदी से पूछती थी। मैं बोला तुम तो एकदम दीदी जो बोलती वही काम करती है, मैं जो बोलती मेरे को क्या ड्रेस पहननी वो नहीं, बोला नहीं दीदी जैसा बोली वैसी करेगी। तो हमने ये प्रैक्टिकल में देखा उनकी लाइफ में कि सचमुच में जो अंत की बेला, अंत के समय उनका जो रोल था, उनकी जो अंतिम स्थिति थी इतनी अच्छी थी, जो बाबा कई बार कहते ना अंत मते सु गते, वो हमने अपनी लौकिक माँ को भी देखा। और कितना यज्ञ की भी इतनी स्नेह थी, दादियों की भी इतनी स्नेह थी, जो उन्होंने घर में रहते जो कहा जो बोला और वो किया। तो इसलिए आप सभी भी प्रवृत्ति वाले हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, उतना ही हमारा बहुत बाबा से उतना ही दिल का प्यार होना चाहिए। और ऐसे तो प्यार है, उस बाबा के प्यार में ही आप सभी यहाँ तक आते हैं, हर साल बाबा से मिलन मनाने आते होंगे। तो इसी प्रकार हमको अपने ब्राह्मण जीवन में इतना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। तो हम तो शुरू से ही एक एक नहीं दो दो दादियों और सभी दादियों की पालना से हम तो बड़े हुए हैं, और शुरू से ही कलकत्ते में रहे और परदादी के साथ में भी अभी 8-9 साल से मधुबन में थे, और उनके जाने के बाद में भी बाबा ने और दादियों ने कहा कि अभी आपको मधुबन में रहना है, मधुबन में मधुबन की संदेशी बनकर। तो अभी भले बीच में कहीं भी जाते हैं और चक्कर लगा करके वापस मधुबन में पहुंच जाते हैं। तो ये भी आप सभी से मिलने का चांस मिला तो बहुत खुशी हुई। ओम शांति।
इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिली, पहले मालूम थी ये बातें किसी को नहीं थी ना मालूम ये सारी बातें। देखो रुक्मणी बहन ने बहुत सालों का उनको उनका अनुभव है, उसको आधा पौने घंटे में सार रूप में सुनाया, और जैसे बता रही हैं कि ये अभी यज्ञ की संदेशी बनकर स्पेशली दादी शानकी ने, दादी गुलजार ने इनको यहाँ पर ही रखा है। वैसे तो 8-9 साल से परदादी के कारण यहीं पर थी, लेकिन अभी संदेशी के रूप में खास इनको यहाँ पर रखा है, तो इसीलिए वो यही होती है और सेवा कर रही है। ऐसे जब भी आप मिलेंगे इनको बहुत से अनुभव, बहुत अनुभव है इनके पास, अनुभवों की खान है। और जैसे दादी ईस्टर्न जोन की जोनल हेड थी, तो मैं ये भी देखती हूँ कि ईस्टर्न जोन बहुत बड़ा है, जैसे हमारा पंजाब जोन बहुत बड़ा है ना, इसी प्रकार ईस्टर्न जोन उससे भी बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। और वहाँ की सभी बड़ी बड़ी बहनें जो हैं वो हमेशा इनके पास आती हैं, जब भी वो मधुबन में आएंगे इनके पास आएंगे तो बहुत प्यार से उनके साथ बैठना, बात करना, उनकी पालना करना अभी भी वो करती रहती हैं। तो ऐसी बहनें जब हमें मिलती हैं तो हमें क्या होता है, बहुत खुशी होती है ना। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट बार जब यहाँ आएंगे तो हम जरूर इनसे मिलेंगे। रुक्मणी बहन आपका बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा सुन के।